ओम शांति, ओम शांति। बाबा हर मुरली में याद को कितना महत्व देते हैं, तो बाबा की याद से क्या क्या लाभ होते हैं वो भी बाबा बहुत बताते हैं। फिर याद को बाबा यात्रा से भी भेंट करते हैं। क्यों यात्रा से भेंट करते हैं? क्योंकि यात्रा में लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य तक पहुंचना होता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे ही लक्षण धारण करने होते हैं। तो बाबा ने भी हमें क्या लक्ष्य दिया है इस याद की यात्रा से? कहाँ जाना है? घर जाना है और नई दुनिया में आना है, ये लक्ष्य है। तो घर कैसे जाएंगे? पावन बनकर ही जाएंगे। पतित आत्मा उस घर में नहीं जा सकती है। और नई दुनिया में कैसे आएंगे? जब दैवी गुण धारण करेंगे। देवता बनना है तो दैवी गुण चाहिए, इसीलिए बाबा याद को महत्व देते हैं, उसको यात्रा कहते हैं। तो आज बाबा ने याद से क्या क्या फायदे होते हैं वो बाबा ने बताए। याद से आयु लंबी होती है, स्वस्थ बनते हैं, धनवान बनते हैं, ऊंचा पद पाते हैं, बहुत कुछ है। गिनती करना बाबा ने आज याद से क्या क्या फायदे होते हैं वो बताए। वरदान मिलते हैं ना, आयुष्वान भव, धनवान भव, तो ये याद से वरदान मिलते हैं। ऐसे नहीं बस वरदान मिल गया और हो गया, पर जितना याद करेंगे उतनी आयु बढ़ेगी। जरूरी नहीं इस यहाँ की बात बाबा कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में तो आयु बहुत बढ़ जाएगी। या तो पापों का हिसाब किताब चुकतू करना है, पर भविष्य में इतनी लंबी आयु किस आधार पर होती है? संगम युग के याद की यात्रा पर। तो आयुष्मान भव का भी वरदान मिल जाता है, धनवान भव का भी वरदान मिल जाता है, पुत्रवान भव का भी वरदान मिलता है। जो वरदान गाए हुए हैं वो संगम युग पर बाबा हमको देते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए। और सबसे बड़ा वरदान तो पवित्रता का है। तो बाबा कहते हैं इस प्रतिज्ञा को बिल्कुल तोड़ो नहीं। और केवल विकार की बात नहीं है, बाबा पवित्रता कई बातों में कहते हैं। आज बाबा ने वो कई बातें बताई है जो पवित्रता के अंतर्गत आती है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 10/6/2024 है। मीठे बच्चे, लक्ष्य को सदा सामने रखो। हमको देवता बनना है ना, तो लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। अगर दैवी गुणों के विरुद्ध है तो फिर देवता कैसे बनेंगे? लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है, कैसे आए दैवी गुण उसके लिए अपनी संभाल करनी है। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं, तब देवता बनेंगे। प्रश्न है, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है? ऐसे नहीं बाबा ने कह दिया आयुष्मान भव और हो गए, लंबी आयु हो गई, मेहनत भी करनी है उसके लिए। तो आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है? उत्तर, बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयु बड़ी होगी। याद से पहला फायदा, सतो प्रधान बनेंगे, फिर आयु बड़ी होगी, फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा। सत्युग में मृत्यु का डर नहीं है, क्योंकि हर एक को पता है मेरी इतनी लंबी आयु होनी है, यहाँ तो हर बार डर ही लगता है ना, मर न जाए मर न जाए। फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा, याद से दुख दूर हो जाएंगे, और आगे याद से दुख दूर हो जाएंगे, तुम फूल बन जाएंगे, याद से ही लक्षण आएंगे तो फूल बन जाएंगे। याद में ही गुप्त कमाई है, खूब धनवान बनेंगे भविष्य में, या गुप्त कमाई करते हैं याद से पाप कट जाते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है। अनुभव है ना, बाबा की याद में बैठे उसके बाद कितने हल्के हो जाते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है, आयु बड़ी हो जाती है। और भी कई बातें हैं याद से क्या क्या लाभ होते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं, समझा भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। एक होता है समझाना, दूसरा होता है पढ़ाना। पढ़ाने के बाद फिर जरूर पूछते हैं, टीचर समझा आपने कि क्या मैंने आज पढ़ाया। तो समझाना भी होता है, पढ़ाना भी होता है, पढ़ा भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चों, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। याद करो सत्युग में आयु कितनी बड़ी थी, 150 वर्ष की आयु थी। बड़ी आयु कैसे मिलती है, कैसे मिलती है बड़ी आयु? तमो प्रधान से, सतो प्रधान बनने से। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो, जानते हो हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयु छोटी हो गई। कैसे आयु छोटी हो गई? तमो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान बनो तो आयु लंबी हो जाएगी। तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी, आयु भी कम और तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल ही रोगी बन गए थे। ये जीवन पुरानी है, नई से भेंट की जाती है। क्यों ये कहते ये जीवन पुरानी है? नया भले जन्म बच्चे का तो भी जीवन तो पुराना ही ना, क्योंकि नई की भेंट में अभी सब कुछ पुराना है। ये जीवन पुरानी है, नई से भेंट की जाती है। अभी तुम जानते हो बाप हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। क्या है युक्ति बड़ी आयु बनाने के लिए? याद की यात्रा। मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले थे, तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाओगे। याद से आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है। अब किसको कहा जाए तुम्हारी आयु बहुत छोटी होगी, हाँ तुम लंबी आयु नहीं जिएंगे, तो डर ही बैठेगा ना, ये पता नहीं कब मर जाऊंगा। तो बाबा कहते हैं आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है, तुमको तो गारंटी मिलती है कि सतयुग में ऐसे अचानक कभी भी मरेंगे नहीं। अभी तो अचानक मरते ना, हार्ट फेल, अचानक रात को सोए सवेरे उठे ही नहीं, पता ही नहीं चला। तो बाबा कहते हैं अचानक कभी मरेंगे नहीं, हाँ ऐसे अपनी स्व इच्छा से देह त्याग करेंगे। बाप को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होगी और सब दुख भी दूर हो जाएंगे। कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। और तुमको क्या चाहिए? कोई दुख न हो, आयु बड़ी हो, स्वस्थ जीवन हो, सब सब कुछ, धन संपत्ति सब कुछ हो, तो तो बाबा कहते और क्या चाहिए, तुम कहते हो ऊंच पद भी चाहिए, अब ये भी चाहिए जरूर, ये सब हो पर पद ऊंचा ना हो तो फिर थोड़ी कहेंगे कि हाँ बहुत ऊंचा जीवन है। तुम कहते हो ऊंच पद भी चाहिए, तो तुमको मालूम ये मालूम नहीं था कि ऐसा पद भी मिल सकता है। कभी सोचा था ज्ञान में आने से पहले हम लक्ष्मी नारायण भी बन सकते हैं? हम तो उनकी पूजा करते थे, ब्रह्मा बाबा को भी जब साक्षात्कार हुआ विष्णु का, विष्णु ने उनको वरदान दिया अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तो बाबा को तो आश्चर्य लगा मैं ये कैसे बन सकता हूँ, ये कैसा वरदान मिल गया कि तू मेरे जैसे हो, तो मैं थोड़ी विष्णु हूँ। अब बाबा कहते हाँ तुम विष्णु बन सकते हो, तुमको मालूम नहीं था कि ऐसा पद भी मिल सकता है। अब बाप युक्ति बताते हैं ऐसे करो, क्या करो जो ये पद आप पाओ। एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम ऐसा पद पा सकते हो। शिविर वालों को हम डायरी देते हैं या लक्ष्मी नारायण का फोटो देते हैं, तो सबसे पहले उनको फोटो दिखाते हैं, यही कहते आप ये पद पा सकते हो। तो जो ये पद पाना चाहता हाथ उठाओ, सारे हाथ उठाते हैं, हमको ये लक्ष्मी नारायण का पद चाहिए, उसके लिए क्या करना है वो फिर बताते हैं। तो बाबा कहते हैं अब बाप युक्ति बताते हैं ऐसे करो, एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम ऐसा पद पा सकते हो। यहाँ ही देवी गुण धारण करने हैं, पद ऐसा पाना है, देवता बनना है तो देवी गुण चाहिए, तो वो भी आप यहाँ ही धारण कर सकते हो। अपने से पूछना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, अवगुण भी अनेक प्रकार के हैं। चलो पवित्र रहते हैं परंतु कभी कभी सिगरेट पीते हैं, अब बताओ हाँ, तो सिगरेट पीना भी तो अपवित्रता है। छीछी चीजें खाना ये अवगुण है, ये भी बाबा कहते हैं हाँ देवी गुणों की लिस्ट में थोड़ी आता है, ये तो आसुरी गुणों की लिस्ट में आएगा। छीछी खाना, क्या क्या खाते हैं दुनिया में, तो बाबा कहते हैं छीछी चीजें खाना ये अवगुण है। सबसे बड़ा अवगुण विकार का है, जिसको ही बैड कैरेक्टर कहते हैं, कहेंगे ना इसका चरित्र ठीक नहीं है, बैड कैरेक्टर है तो चरित्र ठीक नहीं है, माना इसकी दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं है, इसके बोल ठीक नहीं है, तो ज्ञान युक्त नहीं है, योग युक्त नहीं है या दैवी गुणों में युक्त नहीं है। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा अवगुण है विकार का, जिसको ही बैड कैरेक्टर कहते हैं। बाप कहते हैं तुम विशेष बन गए हो, अब वॉइसलेस बनने की तुमको युक्ति बताते हैं कैसे अपना चरित्र सुधारो, उसके लिए बाबा युक्ति बताते हैं। इसमें इन विकारों को अवगुणों को छोड़ देना है, वॉइसलेस बनना है, निर्विकारी बनना है, तो विकारों को अवगुणों को छोड़ देना है। कभी भी विशेष नहीं बनना है, विकारी नहीं बनना है। इस जन्म में जो सुधारेंगे अपने आप को तो वो सुधार 21 जन्मों तक चलना है। इस जन्म में जो अपने आप को सुधारेगा उसका सुधार 21 जन्मों तक चलना है। सबसे जरूरी बात है वॉइसलेस बनना। जन्म जन्मांतर का जो बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है वो योग बल से ही उतरेगा। बहुत बड़ा फायदा योग का, जन्म जन्मांतर के जो बोझ सिर पर है वो योग बल से ही उतरेगा। बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर हम विशेष बने हैं, अभी बाप से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर कभी विशेष नहीं बनेंगे, विकारी नहीं बनेंगे। बाबा से सब ने प्रतिज्ञा कर ली है ना, है ऐसा कोई जो कहे नहीं नहीं मैंने प्रतिज्ञा नहीं की है? नहीं, जो भी यहाँ बैठे हैं सब ने ये जरूर प्रतिज्ञा की होगी कि हम कभी भी विकारी नहीं बनेंगे। बाप ने कहा है अगर पतित बने, प्रतिज्ञा करते उसके बाद फिर अगर पतित बने तो 100 गुना दंड भी खाना पड़ेगा। इसलिए कई डरते हैं, प्रतिज्ञा करने से भी डरते हैं, नहीं कर सके तो बाबा कहते ये भी तो कमजोरी है ना, क्यों नहीं प्रतिज्ञा करनी है। प्रतिज्ञा करो तो बाबा की मदद भी मिलेगी, शक्ति मिलेगी। तो बाप ने कहा अगर पतित बने तो 100 गुना दंड भी खाना पड़ेगा और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि निंदा कराई ना, भगवान की निंदा कराई, तो बताओ कितनी बड़ी सजा। क्योंकि निंदा कराई ना तो गोया उस तरफ यानी विशेष मनुष्य की तरफ, मनुष्यों की तरफ चले गए। ऐसे बहुत चले जाते हैं, अर्थात हाथ खा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं। बाबा कहते थे ना अपना खून वो ब्लड से भी, ब्लड निकाल के भी उसको स्याही बना के लिख कर देते हैं बाबा को प्रतिज्ञा कि बाबा हम कभी भी पतित नहीं बनेंगे, पर वो ब्लड से खून से प्रतिज्ञा लिखने वाले वो भी बाबा कहते हैं माया के हो जाते हैं, अर्थात हार खा लेते हैं। आगे तुमको पता नहीं था कि ये धंधा विकार का नहीं करना चाहिए, आगे थोड़ी पता था। कोई कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे, दुनिया में भी ऐसे कई है, हाँ हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे कहते हैं। सन्यासियों को देख समझते हैं पवित्रता अच्छी है, देखते ना सन्यासी पवित्र है तो समझते ये पवित्रता अच्छी है। पवित्र और अपवित्र, दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं, पाखाने में जाना भी अपवित्र बनना है, टॉयलेट में जाते हैं तो ये भी जैसे शरीर अपवित्र हुआ, इसलिए फौरन स्नान करना चाहिए, शुद्धिकरण तो इसमें भी है ना, टॉयलेट में गए तुरंत स्नान करना चाहिए। अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है, किसको दुख देना, लड़ना झगड़ना भी अपवित्र कर्तव्य है, केवल काम विकार थोड़ी अपवित्र कर्तव्य है, लेकिन किसको दुख देना, लड़ना झगड़ना भी अपवित्र कर्तव्य है। तो बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप किए हैं, बहुत किए होंगे पाप, कितने किए होंगे, वो सब आदतें अभी मिटानी हैं, अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है। सच्चे सच्चे महान आत्मा कौन है, बाबा कहते हैं सच्चे सच्चे महान आत्मा तो ये लक्ष्मी नारायण ही है, सच्चे सच्चे महान आत्मा ये लक्ष्मी नारायण ही है, और कोई तो यहाँ बन न सके, क्योंकि सब तमो प्रधान है। भले किसको भी कहो ये महात्मा है जी, ये महान आत्मा है, परंतु जन्म तो विकार से ही लिया है ना, तो बाबा कहते हैं उन्हों और कोई तो यहाँ बन न सके क्योंकि सब तमो प्रधान है। ग्लानी भी बहुत करते हैं ना, ग्लानी भी को बहुत करते हैं ना, उन्हों को पता नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, ग्लानी करते ना, किसी की भी ग्लानी करना ये भी तो एक पाप बन जाता है ना, हम क्यों दूसरों की ग्लानी करें, जो करेगा सो पाएगा। हाँ अगर हम निंदा चुगली करते हैं, ग्लानी करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पाप बन जाता है। तो बाबा कहते हैं एक होते हैं गुप्त पाप, दूसरे होते हैं प्रत्यक्ष पाप। अब हम समझते हैं हम ग्लानी किसकी कर रहे हैं, किसकी निंदा कर रहे हैं, ये पाप थोड़ी है, क्रोध करना पाप है, काम विकार पाप है, परंतु ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये थोड़ी पाप है, लेकिन ये भी पाप है, बिल्कुल पाप है। तो हम तो बाबा कहे ये कुछ होते गुप्त पाप, दूसरे होते प्रत्यक्ष पाप, ये है ही तमो प्रधान दुनिया। बच्चे जानते हैं बाप हमको अभी समझदार बना रहे हैं, इसलिए उनको सब याद करते हैं। भगवान को क्यों याद करते हैं, भगवान इस समय आकर सबको समझदार बनाते हैं। सबसे अच्छी समझ बाबा कहते तुमको मिलती है, भगवान जो अगर समझ देवे तो ये कितनी बड़ी अच्छी समझ है, और सबसे अच्छी समझ तुमको मिलती है भगवान से, कौन सी, कि पावन बनना है। ये सबसे अच्छी समझ है कि तुमको पावन बनना है, और फिर गुण भी चाहिए, देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते आए हो, अभी ऐसा तुमको बनना है। महिमा तो खूब गाई थे भक्ति मार्ग में देवताओं की, लेकिन ये थोड़ी पता था कि हम भी ऐसे बन सकते हैं, कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बाबा कहते अभी तुमको ऐसा बनना है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूल थे, फिर कांटे बन पड़े हो। अब बाप को याद करो तो याद से तुम्हारी आयु बड़ी होगी, पाप भी भस्म होंगे, सिर से बोझा हल्का होगा। अपनी संभाल करनी है, हाँ, अपने ऊपर ध्यान देना है। हमारे में क्या क्या अवगुण है वो निकालने हैं। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम लायक हो, उसने तो सोचा मुझे तो विष्णु ने तो बहुत सुंदर शरीर चेहरा दे दिया है, अभी तो लक्ष्मी मुझे ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन शक्ल तो बंदर जैसी थी, तो क्या माला पहनाएगी लक्ष्मी उनको। तो बाबा कहते हैं बाप, तो जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम लायक हो, उसने देखा कि बरोबर हम तो लायक है ही नहीं, मेरी शक्ल तो बंदर जैसी है, तो लायक कहाँ हूं मैं जो लक्ष्मी मुझे वरमाला पहनाएगी। बरोबर हम लायक तो नहीं हैं, बाप तुमको ऊंच बनाते हैं, बाप के तुम बच्चे हो ना, जैसे कोई का बाप, हाँ कितने ऊंचे बाप के हम बच्चे हैं, तो जैसे कोई का बाप महाराजा होता है तो कहेगा ना हमारा बाबा महाराजा है, वो राजकुमार कहेगा कि मेरा जो पिता है वो महाराजा है। हाँ, बाबा माना पिता, तो हमारा बाबा महाराजा है। बाबा बहुत सुख देने वाला है, वो महाराजा हमारा जो पिता है हमको बहुत सुख देने वाला है। तो जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता है। द्वापर कलयुग में भी कई महाराजा होके गए, लेकिन इतने अच्छे स्वभाव के थे कभी उनको क्रोध नहीं आता था। नहीं तो राजाओं का तो क्रोध तो बहुत है ना, उनको कभी क्रोध नहीं आता है। अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सबकी कलाएं उतरती गई है, सभी अवगुण प्रवेश करते गए हैं, कला कमती होती गई है, तमो होते गए हैं। तमो प्रधान की भी जैसे अंत आकर के हुई है, केवल तमो नहीं तमो प्रधान, और तमो प्रधान की भी अंत बाबा कहते आकर हुई है। कितना दुखी हो पड़े हैं, तुमको कितना सहन करना पड़ता है। बाबा के बच्चे बनते हैं तो नियमों पर चलना है, तो उसके लिए सहन कितना करना पड़ता है। अभी अविनाशी सर्जन द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है, कितना बड़ा सर्जन मिला है हमें, तो सर्जन तो कहेगा ना कि ये परहेज रखो, तो परहेज बताता है बड़ा सर्जन, क्योंकि बहुत जन्मों की बीमारियां हैं। अभी अविनाशी सर्जन द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है। तो बाप कहते हैं ये पांच विकार तो घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे। बाबा सावधान करते, ये सताएंगे आपको ये पांच विकार घड़ी घड़ी। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे बाप को याद करने का, उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करती है। युद्ध है ना, मल्ल युद्ध माया से। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए, कैसी मजबूत होनी चाहिए, जो कोई माया का तूफान हिला न सके। अंगद के मिसल ऐसा डट के खड़ा रहा अंगद, जो कोई उसका पांव हिला नहीं सका। तो बाबा कहते जो कोई माया का तूफान हिला न सके। रावण कोई और चीज नहीं है, वह कोई मनुष्य नहीं है। पांच विकारों रूपी रावण को ही माया कहा जाता है। आसुरी रावण संप्रदाय तुमको पहचानते ही नहीं है। दुनिया वाले कहाँ पहचानते हैं हम लोगों को, आसुरी रावण संप्रदाय वाले तुमको पहचानते ही नहीं है कि आखिरी में ये है कौन, ये कौन है ये ब्रह्मा कुमार कुमार, या पूछते रहते ना सफेद वस्त्रधारी, तो कई तो उसको बहुत अच्छे रूप से लेते हैं, बहुत अच्छे रूप से, हमें कहाँ गई थी किसी बगीचे में, वहाँ फॉरेन में कहीं, तो वहाँ पर वो विदेशी बूढ़ा बूढ़ी बैठे थे बगीचे में, हम तीन बहने थी सफेद वस्त्र, सवेरे सवेरे वो बैठे थे, तो हम लोगों को देखी कहते लुक एट दीज एंजल्स, एंजल्स एंजल्स, तो एंजल्स तो सफेद वस्त्र ही पहनते ना, तो एंजल्स एंजल्स देखा। और भारत में कोई ऐसे जाए कहेंगे ये तो विधवाएं हैं, ऐसे समझेंगे कई ऐसे, तो ये विधवाओं का आश्रम है, सब सफेद कपड़े पहनते हैं, क्योंकि कई भारत में भी अपने युगल को कभी भी सफेद कपड़े पहने नहीं देते, तुमको बिल्कुल नहीं पहने सफेद कपड़े, तो मैं क्या मर गया हूं या तो ऐसे भी कहते हूं। तो बाबा कहते हैं तो आसुरी रावण संप्रदाय तुमको पहचानते ही नहीं है कि आखिरी में ये है कौन, ये बीके क्या समझाते हैं आप पता ही नहीं उनको, रियलिटी में कोई नहीं जानते ये बीके क्यों कहलाते हैं। हाँ बीके क्यों कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमार क्यों कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमार क्यों कहलाते हैं, क्योंकि हम ब्रह्मा की संतान है इसलिए ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं। अच्छा ब्रह्मा किसकी संतान है, तो हम कहेंगे शिव बाबा की संतान है। तो ब्रह्मा किसकी संतान है, अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापिस घर जाना है, ये बाप बैठ तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, आयुष्वान भव धनवान भव, कितने वरदान मिलते हैं, आयुष्वान भव धनवान भव, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करते हैं, वरदान देते हैं, परंतु सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता है, चलो वरदान दे भी दिया किसी गुरु ने भी या महात्मा संत ने वरदान दे दिया आयुष्वान भव, लेकिन उसकी आयु ज्यादा नहीं होगी तो थोड़ी कोई ऐसे वो आयु बढ़ेगी, वो तो चलो दे दिया खुश कर दिया, परंतु उसका तो अपना हिसाब किताब होगा ना, परंतु सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता है, मेहनत करनी है, अगर लंबी आयु बनानी है तो मेहनत करो, क्या मेहनत करो, बाबा को याद करो तो आयु बढ़ेगी, मेहनत करनी है, हर एक बात समझने की है, अपने को राज तिलक देने की अधिकारी बनना है, राज तिलक देने के अधिकारी बनना है, बाप अधिकारी बनाते हैं, तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं ऐसे ऐसे करो, कैसे अपने को राज तिलक दे सकते हो ऐसे ऐसे करो, पहले नंबर की शिक्षा देते हैं क्या करो राज तिलक लेने के लिए, माँ में कम याद करो मुझे याद करो, हाँ तो राज तिलक लेने के लिए याद जरूरी है। मनुष्य याद नहीं करते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं है, तो याद भी रॉन्ग है, कौन है परमात्मा ये पता ही नहीं है, अच्छा परमात्मा को याद करो, पता ही नहीं वो है कौन तो किसको याद करेंगे, तो इसलिए बाबा कहते हैं याद नहीं कर सकते क्योंकि वो जानते ही नहीं है, तो याद भी रॉन्ग है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, चलो चलो हम वो कहते हम जानते हैं, फिर क्या पूछो कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापी है, तो क्या जानते, ये तो जानना थोड़ी हुआ ईश्वर को, कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे, वो तो सर्वव्यापी है, किसको याद करे कहाँ याद करे वो तो समझ में नहीं आएगा, फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे, शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, तुम पूछो इनका ऑक्यूपेशन बताओ, ये जो शिव की आप पूजा करते हो इनका ऑक्यूपेशन बताओ, तो कहेंगे भगवान सर्वव्यापी है। अब एक तरफ शिव की पूजा करते हैं तो वो तो उसका वो एक एक है ना, तो सर्वव्यापक है, तो फिर एक की कैसे पूजा करते हैं, वो तो फिर सबकी पूजा करो, तो कहेंगे भगवान सर्वव्यापी है, पूजा करते हैं उनसे रहम मांगते हैं, मांगते हुए फिर कोई पूछता है परमात्मा कहाँ है, तो कहते सर्वव्यापी। अब शिव के पास जाकर उनसे रहम मांगते हैं, माफी मांगते हैं, दया मांगते हैं, तो एक से ही मांगते हैं ना, फिर पूछो कहाँ है सर्वव्यापी, तो क्या सबसे मांगते हैं क्या दया या माफी या रहम, तो कहते सर्वव्यापी है। चित्र के सम्मुख क्या करते हैं, फिर चित्र सम्मुख नहीं है तो कला काया ही चट हो जाती है, चित्र के सामने जाएंगे तो कहेंगे भगवान ये दो भगवान ये दो, फिर बाहर गए चित्र सामने नहीं है तो विकारी बन जाते हैं, हम कई बार वो बताते ना आरती में, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो भगवान को कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो, और खुद को क्या कहते हैं, हाँ विषय विकार करो, हाँ पाप करो। भगवान को कहते हरो और खुद को कहते करो, क्योंकि खुद ही कहते हैं ना इन विकारों के बिना दुनिया कैसे चलेगी। तो फिर भगवान को कहा क्यों विषय विकार मिटाओ, आरती में तो यही कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं चित्र, फिर चित्र सम्मुख नहीं तो कला काया ही चट हो जाती है। भक्ति में कितनी भूले करते हैं फिर भी भक्ति से कितना प्यार है, श्री कृष्ण के लिए कितना निर्जल आदि करते हैं, हाँ बिल्कुल पानी भी नहीं पिएंगे, हाँ इतना निर्जल करते हैं। यहाँ तुम पढ़ रहे हो और वो भक्त लोग, यहाँ तो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो और वो भक्त लोग क्या क्या करते हैं, तुमको अभी हंसी आती है क्या क्या करते हैं भक्त लोग। ड्रामा अनुसार भक्ति करते कदम नीचे उतरते आए हैं, ऊपर तो कोई चढ़ न सके। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग जिसका कोई को पता नहीं। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना, बाप भी सर्वेंट होता है बच्चे का, टीचर भी सर्वेंट होता है बच्चे स्टूडेंट का। टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना, स्टूडेंट की सर्विस करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं मानो उनका सर्वेंट हुआ ना, स्टूडेंट की सर्विस करते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं ना, जो गवर्नमेंट जॉब लेते हैं माना उनको गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं, तो गवर्नमेंट की सेवा करते हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट है। बाप भी कहते हैं मैं भी आके सेवा करता हूँ, कौन सी सेवा भगवान करते हैं, तुमको आकर पढ़ाता हूँ, ये कितनी बड़ी सेवा है। टीचर भी सर्वेंट हो गया, पढ़ाता है, तुमको पढ़ाता भी हूँ, सभी आत्माओं का बाप हूँ, टीचर भी बनते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। ये ज्ञान और कोई मनुष्य में हो न सके, कोई सिखला न सके। तुम पुरुषार्थी करते हो कि हम ये बने, ये लक्ष्मी नारायण हम बने, यही पुरुषार्थ तुम करते हो। दुनिया में मनुष्य कितने तमो प्रधान बुद्धि है, बहुत खौफनाक दुनिया है। बाबा ने आज खौफनाक शब्द का, खौफनाक माना एकदम खतरनाक, हाँ वो डेंजर दिखाते हैं ना, हड्डी दिखाते हैं, फिर ऐसे वो हड्डियां दिखाते हैं, को खोपड़ी दिखाते हैं, और डेंजर तो दो वो हड्डियां दिखाते हैं, माना एकदम खतरनाक है, इसको हाथ भी नहीं लगाना। तो दुनिया आज की बाबा कहते ऐसे बन गई है, बहुत खौफनाक दुनिया है। जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वो करते हैं, नहीं जो करना चाहिए वो भी करते हैं। कितना खून डाका आदि लगाते हैं, क्या नहीं करते हैं, हाँ बात ही मत पूछो। बाबा कहते हैं क्या नहीं करते दुनिया में, हाँ 100% तमो प्रधान है। अभी तुम फिर 100% सतो प्रधान बन रहे हो, उसके लिए युक्ति बताई है। क्या युक्ति बताई है 100% सतो प्रधान बनने के लिए, याद की यात्रा। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बाप से जाकर मिलेंगे। भगवान बाप आते कैसे हैं ये भी तुम अब समझते हो, कैसे भगवान आते हैं, इस रथ में आए हैं, ब्रह्मा के थ्रू सुनाते हैं, जो फिर तुम धारण कर औरों को सुनाते हो, तो दिल होती है डायरेक्ट सुने। मधुबन जाएं बाबा से डायरेक्ट सुने, दिल होती है। बाप के परिवार में जाएं, सेंटर पर तो छोटा परिवार है, मधुबन तो बेहद का परिवार है, तो फिर दिल होती है। बाप के परिवार में जाएं, यहाँ बाप भी है, मधुबन में बाप भी है, माँ भी है, बच्चे भी हैं, परिवार में आ जाते हैं, हाँ वो भी आ जाते हैं परिवार में। वो दुनिया तो है ही आसुरी, तो आसुरी परिवार से तुम तंग हो जाते हो, इसलिए धंधा आदि छोड़कर बाबा के पास रिफ्रेश होने आते हो। यहां रहते भी हैं ब्राह्मण, या शूद्र तो रह न सके, ब्राह्मण ही यहां रहते हैं। तो इस परिवार में आकर बैठते हो, घर में जाएंगे तो फिर ऐसा परिवार नहीं होगा। लौकिक परिवार में ऐसा परिवार थोड़ी मिलेगा, अलौकिक परिवार ऐसा परिवार नहीं होगा। वहां तो देहधारी हो जाते, उस गोरख धंधे से निकल तुम यहां आते हो। अब बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ो, भूलो, खुशबूदार फूल बनना है। फूल में खुशबू होती है, सब उठाकर खुशबू लेते हैं, अक के फूल को नहीं उठाएंगे। अक के फूल में तो कोई खुशबू नहीं, वो जंगली, आजकल वो कई जंगली फूल भी बड़े थोड़ी थोड़ी अपनी प्रकार की खुशबू होती है उनकी, अक के फूल को नहीं उठाएंगे। तो फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा भी फूल ले आते। बाबा सवेरे सवेरे बगीचे में जाते थे और बहुत अच्छा फूल लगता था, तो बाबा के साथ बच्चे होते थे, माली भी होता था, बाबा का बच्चा ही था, तो बाबा कहेंगे ये फूल ले चलो क्लास में, तो वो थाली बना करके वो फूल ले चलता था और बाबा क्लास में आके वो फूल दिखाते थे। तो एक एक फूल का महत्व बताते थे। तो बाबा कहते हैं तो फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा भी फूल ले आते हैं। ऐसा बनना है, घर गृहस्थ में रहते एक बाप को याद करना है। तुम जानते हो ये देह के संबंधी तो खलास हो जाने हैं, ये सब देह और देह के संबंध तो सब खलास हो जाने हैं। तुम यहाँ गुप्त कमाई कर रहे हो, तुमको शरीर छोड़ना है। कैसे छोड़ना है शरीर? ऐसे नहीं ऐसे ही शरीर छोड़ना है, शरीर छोड़ना है कमाई करके। हाथ खाली नहीं जाना है, भरतू जाना है। दुनिया वाले तो हाथ खाली जाएंगे क्योंकि वो केवल बाहर की कमाई चाहते, धन मिले, ये मिले, वो मिले, वो तो शरीर छोड़ा सब यही रह गया। तुम सच्ची कमाई करते हो जो आत्मा अपने साथ ले जाती है। तो बाबा कहते हैं तुमको शरीर छोड़ना है कमाई करके, और बहुत खुशी से हर्षित मुख हो शरीर छोड़ना है। अंत में दुखी होकर शरीर नहीं छोड़ना है, हर्षित मुख हो खुशी से शरीर छोड़ना है। घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी, कभी थकावट नहीं होगी। बाप की याद में अशरीरी हो कितना भी चक्र लगाओ, भल यहां से नीचे आबू रोड तक चले जाओ। कोई गया है पैदल आबू रोड तक? अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छा। हाँ, एक हमारे पास भाई था, हाँ क्या नाम था उसका, क्या जी? हाँ, तो वो भाई जो था वो रोज पैदल जाता था, रोज ऊपर से नीचे, और नीचे फिर हमने पूछा ऊपर भी पैदल आते हो? कहते नहीं, ऊपर वो कोई गाड़ी मिल जाती आता हूँ, परंतु पैदल जाता हूँ। तो मैंने कहा क्यों पैदल जाते हो पूरा आबू रोड? कहते बस शरीर के लिए, डॉक्टर ने कहा पैदल खूब करो, तो सबसे अच्छा पैदल तो माउंट आबू से आबू रोड जाना है, तबीयत के कारण कहता था। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहे हाँ कमाई करके जाना है, घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी। बाप की याद में अशरीरी हो कितना भी चक्र लगाओ, बल यहाँ से नीचे आबू रोड तक चले जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। पाप कट जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तुम बच्चों को कितना फायदा होता है और कोई तो जान न सके कि इतना फायदा होता है। सारी दुनिया के मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आकर पावन बनाओ, फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे? हरेक पुकारता है पतित पावन सीताराम, पतित पावन आओ, तो बाबा कहते हैं फिर उनको पावन कैसे कहेंगे, फिर उनको महात्मा भी कैसे कहेंगे? पतित को फिर माथा थोड़ी टेका जाता है, माथा पावन के आगे झुकाया जाता है। कन्या का मिसाल है ना, जब विकारी बनती है तो सबके आगे सिर झुकाती है, पहले उसके आगे सब सिर झुकाते, उनकी पूजा भी करते हैं कुमारी है तो। हाँ, फिर बाबा कहते हैं, फिर वो शादी हुई तो वो भिखारी बनी तो सबके आगे वो सिर झुकाती है और फिर पुकारती है, हे पतित पावन आओ। अरे पतित बनी क्यों जो पुकारना पड़े, पतित बनी क्यों जो पुकारना पड़े। सबके शरीर तो विकार की पैदाइश है ना, क्योंकि रावण का राज्य है। अभी तुम रावण से निकल आए हो, इसको कहा जाता है रावण से निकल आए तो हम कौन बन गए, हम कहाँ आ गए, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। रावण के राज्य से निकल आए, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने के लिए। सत्युग है राम राज्य, सिर्फ त्रेता में राम राज्य कहें तो फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ गया। राम राज्य, रावण राज्य तो केवल त्रेता युग नहीं है, राम राज्य सत्युग भी तो है ना। राम परमात्मा ने वो राज्य स्थापन किया। अगर केवल त्रेता युग ही राम राज्य है तो सत्युग को फिर उसको कैसे क्या कहेंगे। तो बाबा कहे फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ गया। तो ये सब ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिल रहा है, नए नए भी आते हैं जिनको तुम ज्ञान देते हो, लायक बनाते हो। कोई का संग ऐसा मिलता है, अभी बुरा संग लिया, गलत संग लिया तो क्या होगा, कोई का संग ऐसा मिलता है जो फिर लायक से नालायक बन पड़ते हैं। माँ बाप को बड़ी चिंता होती है, बच्चे कॉलेज जाते हैं, पता नहीं कॉलेज जाते हैं या कहाँ जाते हैं, रंगरेलियां करने पता ही नहीं चलता है ना। तो इसलिए माँ बाप को भी डर लगता है, बुरा संग अगर मिल गया तो पता नहीं क्या करेंगे, पढ़ाई भी नहीं पढ़ेंगे। तो कोई का संग ऐसा मिलता है जो फिर लायक से नालायक बन पड़ते हैं। बाप पावन बनाते हैं तो अब पतित बनना ही नहीं है। अंडरलाइन, बाप पावन बनाते हैं तो पतित बनना ही नहीं है। जबकि बाप आया है पावन बनाने, माया ऐसी जबरदस्त है जो पतित बना देती है, हरा देती है। कहते हैं बाबा रक्षा करो, अब हरा दिया, माया ने हरा दिया, पतित बन गए। फिर बाबा को कहते बाबा रक्षा करो, तो देखो बाबा क्या कहते हैं, वाह हाँ रक्षा करो। हाँ बाबा को कहते वाह, तो बाबा कहते वाह। लड़ाई के मैदान में ढेर मरते हैं फिर रक्षा की जाती है क्या, दुश्मन के आगे खड़ा रहना है ना, तो रक्षा उस समय कहेंगे क्या, दुश्मन अभी आया तुम ये नहीं आओ। हाँ तो बाबा कहते ढेर मरते हैं फिर रक्षा की जाती है क्या। ये माया की गोली बंदूक की गोली से भी बहुत कड़ी है, बंदूक की गोली से भी ये माया की गोली बहुत कड़ी है। काम की चोट खाई गोया ऊपर से गिरे, वो तो आत्मा को घायल कर देती है ना काम की चोट। वो गोली तो चलो पैर को लगी या कहाँ लगी, परंतु आत्मा को तो काम की गोली लगती है। तो बाबा कहते गोया ऊपर से गिरे, पांचवे मंजिल से गिरे। सत्युग में सब पवित्र ग्रस्त धर्म वाले होते हैं जिनको देवता कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप कैसे आए हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आकर राजयोग सिखलाते हैं, दिखलाते अर्जुन के रथ पर बैठ ज्ञान दिया भगवान ने, फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते हो। भगवान ने अर्जुन के रथ पर बैठकर ज्ञान दिया फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हो। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उन्हें ही भूल गए हैं, अभी वो स्वयं अपना परिचय देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बच्चों धारणा के लिए मुख्य सार, पहला महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदतें हैं वो मिटा देनी है। महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदतें हैं वो मिटा देनी है। दुख देना, लड़ना, झगड़ना, ये सब अपवित्र कर्तव्य है जो तुम्हें नहीं करने हैं। अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। दूसरा, बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान, अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाले शुभ चिंतक मणि भव। अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाले शुभ चिंतक मणि भव। आज के विश्व में सब आत्माएं, बाबा कहते चिंतामणि है, चिंतामणि, चिंता की मणि है आज दुनिया में सब। आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि है। उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है, इसलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। लोग ऐसे समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। यह टचिंग अभी शुरू हुई है, आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। वो स्पिरिचुअल लाइट कहीं से आ रही है, उसके उसका पीछा करते करते आखिर बाबा कहते हैं ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। आज का व्यक्ति इशारा 10 तारीख है। योग माना ही याद का अटेंशन, योग माना याद का अटेंशन। जैसे कर्म नहीं छोड़ सकते वैसे याद भी न छूटे। कर्म तो छोड़ नहीं सकते तो याद भी न छूटे, इसको कहा जाता है कर्म योगी। कर्म योगी अर्थात हर कर्म द्वारा बाप से स्नेह और संबंध का हर आत्मा को साक्षात्कार हो। जैसे हद की आत्माओं से स्नेह रखने वाली आत्मा के चेहरे और चलन से दिखाई देता है कि ये कोई के स्नेह में लवलीन है, ऐसे हर कर्म बाप के साथ स्नेही आत्मा का अनुभव कराए तब कहेंगे कर्म योगी। कर्म योगी की कितनी डेफिनेशन है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
डिस्पेंसरी में मिला है, किसी गाड़ी की चाबी है।
कहाँ मिली?
डिस्पेंसरी में।
ये चाबी है गाड़ी की, ये डिस्पेंसरी से मिली है, कोई वहाँ छोड़ के गया है, जिस किसी की भी हो वो ले ले।